ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो प्रतिदिन की तरह श्रीमद्भगवतम पे चर्चा होगा। तो जैसे ये शीर्षक चल रहा है असुर राजा हिरण्यकश्यपु, तो ये सातवां स्कंद दूसरा अध्याय है, श्लोक संख्या 16। तो आप लोग बोलिए। एवं विप्रकृते लोकाय दैत्या इंद्रियानुचरो महो सॉरी मुहु दीवं देवा परितेज्य भुवि चेरु अलक्षिता। एवं विप्रकृतं लोके दैतेन्द्रियानुचरो मृहु देवं देवा परितेज्य भुवि चेरुरलक्षता। एवं विप्रकृतं लोके दैतेन्द्रियानुचरो मृहु देवी देवा परित्यज्य भुवे चेरुलक्षता। बोलिए। देवं देव परित्यज्य विचेरुलक्षिता। लोके माताएं शब्दार्थ एवं इस प्रकार विप्रकृते सताए जाने जाकर लोके जब सारे लोग दैत्य इंद्रानुचर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अनुचर्य द्वारा मोह पुनः पुनः दिवं स्वर्गलोक के देवा देवतागण परित्यज्य त्याग कर भूमि पृथ्वी लोक पर चेरु घूमने लगे, लखिता असुरों से छिपकर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इस प्रकार हिरण्यकशिप के अनुयायियों के द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोग ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञ का फल ना पाने के कारण विचलित हो उठे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अदृश्य होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य तथा देवताओं के अन्यन्य श्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। जब असुरों के उत्पातों से यज्ञ होना बंद हो गया तो देवतागण सहज ही यज्ञ के फलों से विचरित रह गए, सॉरी वंचित रह गए, और उन्हें अपने अपने कर्तव्य करने में बाधा पड़ने लगी। अतएव वे पृथ्वी लोक पर यह देखने और विचार करने के लिए उतर आए कि लोग किस प्रकार विचलित हुए हैं और इसके लिए कि क्या करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुर्विन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहां श्रीमद् भागवतम की इस सातवां स्कंद जहां की असुरराज हिरण्यकश्यप के बारे में वर्णन है, तो यहां इस श्लोक में 16वां श्लोक, तो जिस प्रकार यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद भी बहुत छोटा सा तात्पर्य दिए हैं, तो अगर प्रभुपाद जैसे भक्त इसके बारे इस श्लोक को एक छोटा सा तात्पर्य में समाप्त कर दिए तो मेरा तो कोई योग्यता नहीं है कि इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊं। लेकिन प्रभुपाद और गुरु महाराज और आप सभी वैष्णव की कृपा से मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोलना प्रयास करूंगा, तो आप सभी वैष्णव आशीर्वाद करें जिससे मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल सकूं। हरे कृष्ण। तो यहाँ इस अध्याय के शुरू में, जैसे कि प्रथम अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार भगवान सम होने पर भी किस प्रकार वो विषम स्थिति दिखलाए हैं और किस प्रकार वो द्वेष रहित होने के पर भी द्वेष पूर्ण दिखते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के संवाद को प्रारंभ करते हैं और उनका युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था कि किस प्रकार भगवान के प्रति अति ईर्ष्या करते हुए भी शिशुपाल ने भगवान के शरीर साजुज्य मुक्ति को प्राप्त किया और इस कथन को सिद्ध करने के लिए भगवान हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के इस कथा को शुरू करते हैं नारद मुनि। और नारद मुनि इस कथा को बताते हुए क्योंकि वो जो यहाँ उनके कथा से नारद मुनि के ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जो कथाओं को बताते हुए परीक्षित महाराज और महाराज युधिष्ठिर की दोनों के प्रश्न का उत्तर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि ये जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इनके पहले जन्म में ही दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में प्रकट हुए थे और किस प्रकार उन्होंने उससे पहले भगवत पार्षद थे। भगवत पार्षद होने के नाते वैकुंठ धाम में स्थित होकर भी वो वैकुंठ धाम से किस प्रकार उनका यहाँ पतन हुआ इसके बारे में भी बताते हैं। तो बताते हुए कहते हैं कि चतुर कुमार सनक सनातन सनत कुमार इनके ये ब्राह्मण श्राप के कारण उनका इस धराधाम में पतन हुआ था और ये भगवान के इच्छा से ही ये सब हुआ था। और इस कथाओं को बता के नारद मुनि हिरण्यक्ष के विषय में बताते हैं तो किस प्रकार उसने माता पृथ्वी का अपहरण किया चोरी किया और जिसके कारण उन्होंने हिरण्याक्ष की शुक्र रूप में अवतार लेकर भगवान हरि ने हिरण्याक्ष को वध किया। तो इसके लिए जैसे हिरण्याक्ष का गलती था कि वो पृथ्वी का चोरी किया इसलिए उसका वध हुआ लेकिन युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं लेकिन हिरण्यकशिपु कि किस कारण दंडित होना पड़ा। वहां बताते हैं कि वो अपने स्वपुत्र जो कि भक्त प्रवर थे उनके प्रति द्वेष किया द्रोह किया और उनको जातना दिया जिसके कारण उन्होंने हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर बद्ध किए। तो इसके बारे में बताते हुए उन्होंने इस विषय को शुरू करते हुए वो हिरण्यकशिपु के जब ही हिरण्यक्ष का वध हुआ उसके बाद जय श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री श्री गौर नित्याय शिल प्रपाद की जय। तो हिरण्यकशिपु किस प्रकार इस संसार में लोगों को पीड़ित करने लगा इसके विषय में प्रारंभ किए। तो यहाँ 12वें श्लोक में कहते हैं जत्र जत्र दिजो गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया ततः जनपदम जात संधि पयो जुक्षतः। तो हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष का बद्ध हो गया उसने उसके मन में भगवान के प्रति देश सृष्टि हुआ और वो अपने असुर सहयोगी को बुलाकर कहने लगा देखो भगवान हरि जो है पहले तो देवता और असुरों के लिए समभाव रखते थे लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति हो चुका है कि ये हरि जो है जो समहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषी नमे प्रियः जी भजन्ति तुमा भक्त्या मई तेषु चाप्यहम। तो भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि समहम सर्वभूतेषु सब जीवों के लिए समान हो। तो इसी बात को कहते हुए कहते हैं, ये तो भगवान हरि सबके लिए समान भाव से रहते हैं, लेकिन आज ऐसे करतूत किए कि एक छोटे बालक के भांति, जिस प्रकार कोई बालक को कोई मिष्ठान देकर लड्डू, या श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जिस प्रकार कोई बालक को लड्डू या बर्फी देकर कोई अपने तरफ कर लेता है, उसी प्रकार ये देवतागण जो है भगवान विष्णु को अच्छा अच्छा पकवान खिलाकर, हाँ जैसे हमारे मंदिर में राजभोग खिलाया जाता है, ऐसे ही अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाकर भगवान को अपने तरफ कर लिया है। तो इसलिए वो अच्छा अच्छा व्यंजन प्राप्त करके ये विष्णु जो है हमारे असुरों के प्रति द्वेष करके, मेरे भाई जो मेरे सर्व प्रिय भाई थे, मेरे आत्मा से भी प्रिय जो अनुज थे, उसका वध किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं तुम सभी जाकर पृथ्वी में जाओ, और पृथ्वी में क्या करो, तो पहले ये उसका महामंत्र था, और आचार्य लोग इसे टीका करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती तुम्हें कोई वरिष्ठ भक्त का प्रवचन में सुन रहा था, तो वो बताते हैं किस प्रकार जिस बात को प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जितने भी तात्पर्य दिए हैं उन्होंने सभी आचार्यों के टीकाओं को पढ़कर उन्होंने अपने तात्पर्य लिखे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि ये जो भगवान विष्णु जो ऐसा व्यवहार किए के असुरों के प्रति द्वेष किए, तो वो भी टीका करते हैं कि हिरण्यकशिपु का भाव ये था कि जो सम है सबके लिए समान दृष्टि रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने देवताओं का पक्षपात लेकर मेरे भ्राता के वध किए। तो इसलिए तुम लोग जाओ पृथ्वी पे, तो क्या करो, जत्र जत्र द्विजो गाव वेदावर्णाश्रम क्रिया, जहां जहां द्विज यानी ब्राह्मण गाव होते हैं उसका वध, और जो शास्त्र के विधि विधान को पालन करके कार्य होते हैं उसे बंद करो, उसे नष्ट करो। तो यहां कहते हैं जहां कहीं भी गौ तथा ब्राह्मणों की सुरक्षा प्राप्त है, तथा जहां जहां वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहां वहां तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो, और जीवन के स्तोत्र वृक्ष को जड़ से काट कर गिरा दो। तो भले ही हिरण्यकश्यप असुर थे, लेकिन देखा जाए तो वो शास्त्रों का अध्ययन किए थे, हाँ तो जानते थे कि अगर भगवान को नुकसान पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये द्विजा और गाव, शायद वो पढ़े थे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि भगवान को ये दोनों अत्यंत प्रिय है। तो उन्होंने कहां से भगवान को कष्ट पहुंचाने की शुरू किया, ब्राह्मण और गाव। तो ब्राह्मण को तकलीफ देने से, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान के मुख के समान है, और ऐसे भगवान की जो विराट रूप को विभाजन किया गया है उसमें ब्राह्मण मुख्य सदृश है, बाहु राजन्य कृतः, तो बाहु जो है क्षत्रिय है, और जो उदर है वैश्य है, और चरण जो है भगवान की वो शूद्र के तुल्य है, तुलना किया जाता है भगवान के। तो भगवान को कष्ट पहुंचाने के लिए या भगवान किससे बदला लेने के लिए उन्होंने इसी से शुरू किया कि किस प्रकार गाव और ब्राह्मण और वर्णाश्रम आश्रम पद्धति को तोड़ने के लिए प्रयास किए। तो इसी से उन्होंने बहुत प्रकार की पृथ्वी में यातना दिए, पृथ्वी के लोगों को, द्विजों को, ब्राह्मणों को, द्विज यानी द्वितीय जन्म। तो देखा जाए तो हमारा पहला जन्म सुकर जन्म होता है, फिर जब भी हम गुरु से दीक्षा लेते हैं द्विज कहलाते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है जन्म ना जायते शूद्रो, तो जन्म से ही व्यक्ति शूद्र होता है। तो सभी शूद्र व्यक्ति जो होते हैं उनमें वास्तविक वैदिक ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन जब भी हो गुरु के निर्देशन में, गुरु की कृपा से जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु की कृपा से उसे द्वितीय जन्म जब भी होता है तो शास्त्रिक वैदिक जन्म से ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो जन्म ना जायते शूद्र संस्कारे भवे द्विज, वेद पठे भवे विप्रो, ब्रह्मा जानति इति ब्रह्मण। वेद पढ़ने पर विप्र बनते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो द्विज है, एक तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है उसको दिया जाता है जन्म संस्कार होता है, और कहीं कहीं क्षत्रियों को भी जन्म संस्कार किया जाता है, और विशेष तौर से वैश्य को यह अधिकार मिलता है कि वो जन्म संस्कार होए, और शूद्र को तो इसका किसी प्रकार की भी आज्ञा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सभी व्यक्ति जन्म से शूद्र होते हैं। तो लेकिन भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से ये अगुण और कर्म से व्यक्ति इस अपने जो वर्ण को बदल सकते हैं। भगवान जिस प्रकार भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्वर्ण मया शिष्ट गुण कर्म विभागयो तस्या कर्तारमं बिम्बा वृद्धा कर्तारमं वयम्। हे चार प्रकार की जो वर्ण आश्रम है इसको गुण और कर्म के द्वारा विभाजित किया गया है। इस प्रकार तो भगवान की जो द्विज होते हैं वो अत्यंत प्रिय होते हैं भगवान, क्योंकि भगवान गो ब्राह्मण हिताय च, इसलिए उन्होंने हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण और द्विज और वर्णाश्रम प्रदति गौओं को तकलीफ देना शुरू किया। इससे 13वें श्लोक में इस प्रकार कहते हैं, इस तरह जघन्य कर्म के लिए लालायित असुरों ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा के अत्यंत आदर पूर्वक लिया, और इन्हें नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कृत्य के जुट गए। स्वाभाविक तौर से इनका तो गुण तमगुणी रजगुणी से राख्या श्लोक भरे रहते हैं, और इस प्रकार कोई बंदर है और बंदर तो ऐसे ही चंचल होता है, लेकिन ऊपर से उसको अगर मदिरा पिलाया जाए तो क्या होगा, वो और चंचल और मत वाला हो जाए। उस प्रकार ये स्वाभाविक तौर से ये राख्या श्लोक उनका आदत है कि वो ऐसे कार्य के लिए अत्यंत उनका प्रिय होता है। किस प्रकार कहाँ मारपीट हो, कहाँ तोड़ना है, ये सब कार्य में वो माहिर होते, लेकिन ऊपर से उनका आदेश मिल गया कि जाओ तुमको ये सब करना है। तो जो कदन प्रिय, जो कि झगड़ा करने में प्रिय है, तो उनको तो आदेश मिल गया। उन्होंने हिरण्यकशिपु को प्रणाम किया और आनंद होकर उन्होंने कहाँ चले गए, सीधा पृथ्वी लोक पे आए। और उन्होंने आकर यहाँ पहले क्या किए, आकर नगर, गांव, चरागाह ऐसे सभी तोड़ने लगे, और जितने भी वृक्ष थे, जो आम कटहल जैसे जो फलदायक वृक्ष थे, क्योंकि ब्राह्मण गाय ये क्या करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के लिए जो सामग्री है गायों से प्राप्त होता है, तो उनको तो ध्वस्त किए। लेकिन अभी भगवान को भोग लगाने के लिए जो है वस्तु फल उसको भी नष्ट करने के लिए प्रयास किए। अगर भगवान को ये लोग एक तो ब्राह्मण और गाय और भक्तों के भोग से ये उसका भाव ये था कि इनके कारण ही जो विष्णु है अत्यंत बलवान हुआ है, तो पहले मैं इस चीजों को जब नष्ट कर दूंगा तो स्वाभाविक तौर से वो कहता है कि जैसे एक वृक्ष के जड़ को काट देने से उसके कोई अस्तित्व नहीं रहता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब मैं भगवान विष्णु को ही जड़ से मिटा दूंगा तो ये देवता कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाया और इस प्रकार की योजना पे कार्यग्रत किया। हर ऐसे कार्य के कारण ही तभी पृथ्वी में ये सब क्रियाएं यज्ञ क्रियाएं बंद हो गया। तो इस 16वें श्लोक में कहा गया है इस प्रकार हिरण्यकश्यप के अनुयायियों के द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञ का फल ना पाने के कारण विचलित हो उठे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अदृश्य होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। तो जैसे ही इस प्रकार की तकलीफ देने लगे सभी व्यक्तियों को, तो बाध्य होकर ब्राह्मण जो भी वैदिक क्रियाएं होते थे वर्णाश्रम पद्धति सभी बंद करना पड़ा उन्हें। तो इस प्रकार की क्रियाओं से जब भी भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा संपन्न होने होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और प्रभुपाद इसको तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवद गीता में ये कहा गया है कि देवतागण जो कि यज्ञ के माध्यम से वो अपना जो आहार ग्रहण करते हैं और इससे यज्ञ के माध्यम से वो बलशाली बनते हैं, तो इसके जब यज्ञ बंद हो गया तो देवताएं यज्ञ का फल पाए बिना वो विचलित होने लगे और यहां आकर पृथ्वी में वो इधर उधर भटकने लगे। तो इसलिए देखा जाए तो यज्ञ पे पूरी संसार आश्रित है। जैसे कहा जाता है अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञत कर्म समुद्भवा। तो अन्न पे आश्रित है, अन्नाद भवति भूतानि, जितने भी जीवात्मा है वो अन्न पे आश्रित है। और अन्न कैसे होता है, अन्नाद भवति पर्जन्य, बारिश के माध्यम से अन्न का उत्पादन होता है। तो ये जो जीवन चक्र है वो भगवान के यहां भगवद गीता की तीसरे अध्याय 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो ये भगवान ही इस संसार में ऐसे व्यवस्था बनाए कि जिस जैसे कि भगवान यज्ञ के माध्यम से देवता किस प्रकार खुश होते हैं और देवता खुश होने से बारिश होता है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं में जब भी गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुआ, गोवर्धन पूजा में क्यों इंद्र का पूजा किया जा रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि जब इंद्र संतुष्ट होता है वो बारिश करते हैं, इंद्र के संतुष्टि से बारिश होता है और बारिश होने से अन्नाद भवति पर्जन्य पर्जन्य अन्न संभवा, पर्जन्य से अन्न यानी खेत में धान चावल ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वस्तुएं उत्पन्न होते हैं, जिसको खाकर जीव जीव जीवित रहता है। तो अन्नाद भवति पर्जन्य, पर्जन्य अन्न संभवा। तो इसलिए जब भी यज्ञ का फल ही देवताओं को मिला नहीं, और ना मिलने के कारण देवताओं भी विचलित हो गए, और उन्हें भी इस धरती पे आना पड़ा कि क्या चल रहा है, क्यों यज्ञ नहीं हो रहा है, उनको अत्यंत कष्ट हो रहा था। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने बहुत से, क्योंकि उसको ऐसा शक्ति प्रदत्त हो गया था जिसके कारण वो मतांध हो गया था, और शक्ति के कारण जो मतांध होते हैं ऐसे अंध तो धनांध होते हैं और कामांध, तो ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति होता है। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति धन होने पर वो धन के कारण गर्वित होते हैं, और बहुत सौंदर्य होने पर, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव है स्वाभाविक तौर से भगवान के विरुद्ध होता है, क्योंकि वो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुमार चरणे बाधा, मोह जनमिया नित्य संसारे जीवे कु कराए गाधा। अरे जड़ विद्या जत मायार वैभव, भौतिक के जितने भी संपत्ति है ये माया का वैभव होता है, ये भगवान की ओर जाने के लिए बाधक होता है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं कभी जड़ विद्या या जड़ वैभव को इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रकार की धन प्राप्त होने से, धन मिलने से वो क्या होंगे, गर्भित होंगे, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगा। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार बल दर्पम काम क्रोध च संसृतः मामात्मा परदेहेषु प्रदृश्यन्ति मयश्रुयक्। कि जो व्यक्ति अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुर व्यक्ति शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ऐसे ही परिस्थिति है हिरण्याक्ष के जीवन में, सॉरी हिरण्यकशिपु के जीवन में, क्योंकि उसके पास अत्यंत धन बल और सहयोगी होने के कारण बल दर्प काम क्रोध ऐसे होने पर वो अपना शरीर को मैं मान रहा था और अपने संबंधियों को मेरा मान रहा था, और वो दूसरे के प्रति इसके कारण द्वेष कर रहा था, और जो अपने हृदय में और जो सब समग्र जीवात्मा के हृदय में जो भगवान स्थित है उसी भगवान को ही वो मारना चाहता था, जो हरि सबके चित्त में या सबके हृदय में वास करते हैं, जो सारी जगत को पालन करते हैं, वो ही हरि को विनष्ट करना चाह रहा था, क्योंकि उसके सर पर इस प्रकार की गंदगियां भर चुका था, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर बल दर्प काम इस प्रकार के गुण आ जाने पर, क्योंकि ये दो तरीका से कार्य करते हैं, बल भक्त में भी होता है असुरों में भी होता है, लेकिन जो भक्त होता है वो बल को भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे एक आचार्य एक भजन में कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध कृष्ण द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। जो व्यक्ति भक्त होता है वो काम कृष्ण कर्मार्पणे अपने काम को कृष्ण के कर्मार्पणे लगाते हैं, क्रोध कृष्ण द्वेषी जने, जो जो क्रोध है वो कृष्ण के द्वेष करने वाले उस पर लगाता है। लोभ साधु संग हरि कथा। तो ये भक्तों को ये विज्ञान पता होता है कि अपने, क्योंकि स्वाभाविक तौर से जो शरीर धारण किया है उसके अंदर ये तीन चीज का वास होता है, काम क्रोध लोभ। लेकिन इसको किस प्रकार कार्य में लगाना है ये भक्त जानते हैं। तो भक्त इसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, और इसी चीज को अगर अपने खुद के सेवा में लगाए तो हमें ये भगवद गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये तीन प्रकार की नरक का द्वार है। क्या है? काम क्रोध तथा लोभ। ये काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक का द्वार है। लेकिन इस काम और क्रोध लोभ का अगर हम भगवान के सेवा में लगाए यही हमको भगवत धाम ले सकता है। लेकिन इसकी विज्ञान को कौन जानता है? भक्त जानते हैं। तो असुरिक भाव से, क्योंकि उनको श्राप दिया ब्राह्मणों ने, हाँ ऐसा नहीं भी सोचना चाहिए कि असुर भक्त नहीं होते हैं, तो ये सोच लेना भी गलत है। देखा जाए तो असुरों में भी, जैसे प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म हुए थे फिर भी वो भक्त थे, बलि महाराज हाँ, लेकिन उनको श्राप दिए थे। जो चतुर सनत ने श्राप दिया कि तुम, उनको श्राप दिया कि तुम पाप आसुरी जोनि, हाँ आगे के श्लोक में कहा गया है कि तुम पापमय असुर जोनि में प्रवेश करो, तो वो पापमय असुर जोनि में प्रवेश किए। तो ऐसे जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में ये काम क्रोध लोभ अपने में और मेरे में ही लगा रहता है। लेकिन जो पवित्र भगवत भक्त होते हैं उनका काम क्रोध मोह ये सब भगवान की सेवा में लग जाता है, और वो जानते हैं। यहां तक कि आगे के श्लोकों में हिरण्यकशिपु स्वयं आत्मज्ञान का विषय में कहता है, किस प्रकार हम वो अपने माता और भातृवधू और अपने भतीजों को समझाता है कि तुम किस लिए रो रहे हो, आपकी जो पिता या पुत्र पति जो वीर गति को प्राप्त हुआ वो तो शरीर नहीं आत्मा थे, वो बहुत प्रकार के वो बताते हैं आत्मज्ञान के विषय में कहते हैं। और इसको कहते हुए वो किस प्रकार जमराज ने हाँ हुसिनर राजा को किस प्रकार समझाए, उसके जमराज के कथाओं को भी बताकर समझाना चाहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं हिरण्यकशिपु एक अच्छा राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो जानता था कि किस काल परिस्थिति में कैसे क्या करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु वो जानकर किस प्रकार उसे कहां क्या करना है वो कर रहे थे। तो उन्होंने अपने भतीजे भातृवधु और माताओं को सांत्वना देने के लिए उन्होंने पूरी तरह अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, आत्मविज्ञान को कहा। तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा जिस प्रकार भगवद गीता में भगवान जैसे श्लोक कहे ऐसे ही कॉपी जैसे ही श्लोक है। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक में भगवान कहते हैं यथाकाश्यम स्थितम नित्यम वायु सर्वत्र गोमह तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारये। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में स्थित होता है, वायु सर्वत्र विद्यमान रहता है, और उसी कहानी इस कथाओं को बताते हुए हिरण्यकशिपु भी बता रहे कि ऐसे ही हाँ सर्वत्र परमात्मा के में विद्यमान है भगवान, इसके कहानी को बताते हैं। लेकिन इनके ये विज्ञान, एक ज्ञान होता है एक विज्ञान होता है। तो आसुर लोक को ज्ञान होने पर लेकिन कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान होता है लेकिन इसको वो पालन नहीं करते हैं। करना और कराना में अंतर होता है। अगर खुद करेंगे तो दूसरे को करा सकते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु कह रहा था लेकिन वो अपने जीवन में वो पालन नहीं करता। जो इतना आत्म साक्षात्कार के विज्ञान बताया और भगवान के बारे में भी इतने अच्छा सुंदर प्रवचन दिया, लेकिन वो खुद अनुभूति नहीं कर पाया कि जो आत्मा के विषय में मैं बता रहा हूं, जो भगवान के विषय में बता रहा हूं, वही भगवान मेरे हृदय में भी स्थित है, वही मेरे को संचार कर रहे हैं। क्योंकि जमराज जब बालक के रूप में आकर समझाते हैं और कुलीन पक्षियों के कहानी बताकर है कहते हैं कि तुम किस लिए रो रहे हो, हाँ किसके लिए शोक कर रहे हो। देखो जो भगवान सबको मातृ गर्भ में रक्षा कर रहे थे, क्या वो हमारा रक्षा नहीं कर पाएंगे? वो हमारा सर्वत्र रक्षा करते हैं, लेकिन वो सब अपने कर्म के अनुसार सब अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार कुछ समय के लिए जैसे बताते हैं कि भोजनालय में कुछ समय के लिए कुछ अतिथि इकट्ठा होते हैं, फिर अपना काम निकल जाने पर फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। तो उस प्रकार ही इस संसार में सब कुछ समय के लिए आए हैं। तो ऐसे कहानी बताते हैं, वो कहते हैं कि जगत जो भगवान कृष्ण है सबके रक्षा करते हैं। तो एक भजन में एक आचार्य कहते हैं, जगत गुरु कृष्ण सवे करिबे रक्षणा, कृष्ण विश्वम भर विश्व करे न पालना, कृष्ण होइते विश्व होइया छे उदय, अवशेषे विश्व कृष्णे हयालय, कृष्ण विश्वावस्थिता जीव कृष्ण दशा, सद्गति पदता कृष्ण करह विश्वास। जो जगत गुरु कृष्ण है वो सबकी रक्षा करते हैं। जगत गुरु कृष्ण सबे करीबे रक्षण, कृष्ण विश्वम भर विश्व करे न पालना। इसी बात को हिरण्यकशिपु जमराज के कथाओं को कहकर कहते हैं, लेकिन वो खुद अपने जीवन में अनुभूति नहीं कर पाए। अगर भगवान विष्णु सबका रक्षा कर पाएंगे तो उसका भ्राता का रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन उसकी एक ऐसे ही कर्तृत्व था जिसके कर्तृत्व के कारण कर्म के कारण वो अपने कर्म का फल को प्राप्त किया। तो क्योंकि जमराज बताते हैं जो हुसिनर राजा के पत्नियों को कि आपकी जो पति को गर्भ में रक्षा किए भगवान, शायद उन्होंने पूछे कि अगर भगवान गर्भ में रक्षा कर किए हैं आपको और हमारे पति को, तो वो क्यों युद्ध भूमि में क्यों रक्षा क्यों नहीं किए? तो आचार्य लोग टीका करके कहते हैं वो स्वतंत्र है, वो ईश्वर है, हाँ तो वो अपने इच्छा से करते हैं। कैसे? जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते बालू में घर बनाता है, फिर वो अपने इच्छा से उस बालू के घर को तोड़कर फिर आनंद लेता है। तो ऐसे ही भगवान की सृष्टि है, लीला है, वो स्वतंत्र है, ईश्वर है, तो वो उनके सवाल नहीं कर सकते, वो जैसा चाहे वो ईश्वर है कर सकते हैं। तो भगवान इस सदगति प्रदाता कृष्णा, भगवान सदगति प्रदान करते हैं, चाहे वो आशीर्वाद हो या श्राप हो। श्राप देके भी वो भगवान उद्धार करते हैं लोगों को, और आशीर्वाद देकर भी। तो भगवान ने श्राप दिया, भगवान ने योजना बनाकर जय विजय को श्राप दिया, और श्राप में भी उनका मंगल था, क्योंकि उनका वध भगवान के हाथों हुआ और भगवान के शरीर में फिर फंस गए, जैसे नल कुबेर मणिग्रीव को श्राप दिए भगवान ने, लेकिन उनका श्री नारद मुनि ने श्राप दिया, लेकिन उद्धार कैसे हुआ? भगवान के हाथ से उद्धार हुआ। तो ऐसे जैसे भगवान और भगवान के भक्तों के श्राप भी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद हो जाता है, क्योंकि सदगति प्रदाता कृष्ण करह विश्वास, जो कृष्ण है वो सदगति चाहते हैं। इसलिए जैसे कहावत है ना, भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए, जो भी भगवान करते हैं हमारे मंगल के लिए, भगवान कभी हमारा अमंगल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही है, क्योंकि उनका स्वभाव चाहने पर भी किसका वो अमंगल चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शरीर ही हाँ सच्चिदानंद विग्रह है, जिसके स्वभाव में ये भाव नहीं है कि वो किसके प्रति द्वेष घृणा या अमंगल चिंता कर पाए, किसी का भी चाहे वो अमंगल चिंता करके भी वो प्राणी का मंगल करते हैं, वो अहित साध के भी उसका हित करते हैं। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं तो क्या सोचते हैं, तो भगवान जो है निर्दयी है, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों करना था, ये वो जानते नहीं कि किसमें हित है, वो चाहते हैं कि हम हमारा जो इच्छा होता है वही हमारा हित है। जैसे एक छोटा बालक उस जानता नहीं कैसे किसमें हित है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ये जब मैं बचपन में पंखे के अंदर हाथ डालना चाह रहा था तो मेरे पिताजी बहुत रोकते थे, हाँ लेकिन एक सज्जन बोले एक काम करो उस बटन को बंद करो और हाथ डालने दो, हाँ तो बच्चा जैसे जानता नहीं कि किसमें हित है, तो ऐसे ही हम आग को पकड़ने चाहते हैं। लेकिन जो भगवान है या साधु है गुरु है वो जानते हैं हमारे किस में हित है, वो उस हित को साधने के लिए हमारे चाहता चाहे हमको ये लग सके कि ये जो कर रहे हैं हमारे साथ ये बहुत नाइंसाफी है, लेकिन यही हमारे लिए मंगलकारी है। लेकिन हमको पता नहीं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, लेकिन भगवान के कार्यकलाप में हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो जो भक्त होते हैं वास्तव में वो सब जगह भगवत दर्शन करते हैं और भगवान की इच्छा को ही सर्वस्व मानकर चलते हैं। तो इसलिए जैसे आप जानते हो जैसे बीरबल और अकबर की कथा में, तो अकबर का जब उंगली कट गया हाँ तो बीरबल कहे भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए करते हैं सबके लिए, तो उसको अकबर ने बीरबल को जेल में डाल दिए, तो जेल में डाल दिए तो अभी अकबर गए जंगल में शिकार खेलने, तो वहां उनको कुछ जंगली लोग आदिवासी लोग पकड़ के ले गए जंगल में क्या करने बलि चढ़ाने के लिए काली माता के लिए। जब वहां जाके देखा तो उनका एक उंगली कटा हुआ है, तो ऐसे कटा हुआ व्यक्ति बलि नहीं चढ़ सकता है, तो तभी उनको याद आया अरे सही बात है कि जो बीरबल ने कहा था वो सही है कि भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए। लेकिन वो इस चिंता में थे मेरा तो मंगल हो गया कि मेरा उंगली कटा मंगल हुआ, लेकिन बीरबल का क्यों मंगल हुआ, वो तो उसको तो मैं जेल में डाल दिया, तो वहां जाके पूछे बीरबल मेरा तो मंगल हुआ कि मैं बच गया, नहीं तो मैं बलि चढ़ने वाला था, लेकिन तुम तो जेल में गए तुम्हारा किस प्रकार मंगल हुआ। वो कहते हैं देखो महाराज अगर मैं आपके साथ रहता, मैं अगर जेल में नहीं रहता तो आपके साथ रहता, और आपके साथ रहता तो क्या होता, आप जहां जाते हो मैं वहां जाता हूं, मैं तो आपके साथ ही साथ रहता हूं, तो आज आप शिकार करने जंगल में गए तो मैं भी आपके साथ में जाता, और उसके साथ मेरा क्या होता, मेरा तो कहीं कटा कुटा नहीं है, हाँ वहां मुझे ही काट देते। इसलिए भगवान जो करते हैं प्राणी के हित के लिए करते हैं। तो ये श्लोकों में जैसे कहा गया है कि देवता लोग यज्ञ के फल को पाए बिना उन्होंने अत्यंत विचलित होकर पृथ्वी में आके अवलोकन करने लगे, तो वास्तव में भगवान हाँ यज्ञ वै विष्णु भगवान ही सभी यज्ञों का आगार है, सभी यज्ञों का फल जो है भगवान को ही प्राप्त होता है, तो देवता के माध्यम बनाकर देवताओं को भी कुछ उनका हिस्सा प्राप्त होता है, लेकिन जो वास्तविक यज्ञ होता है तो भगवान की खुशी के प्रसन्नता के लिए होता है। और भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्मो न त्याज कार्यमेव च, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ दान तप कर्म ऐसे व्यक्तियों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणम् पवित्र करता है मनुष्य को। और प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण और गांव को कलयुग में बहुत प्रबल लोग द्रोह कर रहे हैं, गांव गायों की हत्या हो रहा है और ब्राह्मण संस्कृति का पूरी तरह से पतन हो चुका है। तो प्रभुपाद तात्पर्य 12वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं 12 या 13 श्लोक में कि अगर इस गांव गायों की रक्षा और ब्राह्मण संस्कृति का उत्थान चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि संकीर्तन आंदोलन को, जो संकीर्तन यज्ञ है उसको हमें अति प्रबलता से चलाना पड़ेगा, से कि इस ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुत्थान हो सके, पुनर्जागृति हो सके। क्योंकि जो ब्राह्मण है भगवान के मुख है, इस प्रकार मुख के बिना ये भौतिक समाज या भगवान ये वर्णाश्रम धर्म अधूरा है। इसलिए इस ब्राह्मण संस्कृति को जागृति कराने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए हम इस हरे कृष्ण आंदोलन का स्थापना किए हैं और इस हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र के द्वारा हम ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्जागृति करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो किसका कुछ प्रश्न है तो कुछ
सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण। ये यज्ञ का फल क्या होता है? देवताओं जब यज्ञ करते हैं तो देवताओं को फल मिलता है, मतलब क्या मिलता है?
जी आप जानते हैं, मेरा परीक्षा मत लीजिए।
ये तो उत्तर नहीं हुआ ना।
आप जानते हैं प्रभु जी?
नहीं जानता हूं, इसके लिए पूछ रहा हूं। नहीं पूछूं तो ठीक है,
मुझे भी पता नहीं।
ठीक है,
हरे कृष्ण। कोई बता सकते हैं प्रभु जी के प्रश्न का उत्तर?
हरे कृष्ण। एनीवे, ये जो यज्ञ जो है इसकी जो शुद्ध जो हम आहुति देते हैं तो वो अग्नि के द्वारा देवताओं के पास जाता है और देवता से वो विष्णु के पास जाता है, ये है। और या तो फिर ये कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन यही यज्ञ है, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझा तो हरिनाम यज्ञ इज इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। नहीं, देवताओं के हाथ में क्या आता है वो मालूम नहीं, लेकिन ये जो है कि देवताओं के द्वारा विष्णु के पास जाता है और भगवान कहते हैं कि अग्नि जो है वो मेरा मुख है। नो आंसर। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की। शील प्रभुपाद की।
हरे
गौर प्रेमानंदे।
हरे हरि बोल।
हरे कृष्ण।